हरे कृष्णा। सब ठीक हैं आप लोग? कैसे हैं? ये रविवार का जो प्रोग्राम हो रहा था पहले, वो फिर से हम शुरू कर रहे हैं। जब महानंदा नगर में हम थे तो बड़े धूमधाम से होता था ये रविवार का संडे फीस्ट। बल्कि इस मंदिर में आने के बाद जगह के बंदोबस्त नहीं रहने के कारण हम वो प्रोग्राम ये जो हो रहा था वो बंद कर दिया था, और शाम को केवल प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता था। आज शायद सबको पता नहीं चला है, तो इसलिए कम आदमी आए हैं। मेरा याद है जब हम पहले यहाँ आए थे तब रविवार को 1500 ऐसे आदमी आता था। 1500 लोग आते थे महानंदा नगर में, छत के ऊपर प्रसाद बांटते थे हम लोग, और मंदिर में क्लास होता था। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्णा को क्या कहा जाता है? ये क्या है? महामंत्र है। महामंत्र का मतलब क्या है? मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ होता है जो हमें ये मन की बंधन से जो हमें मुक्त करता है, जिसके द्वारा हम मन से त्राण प्राप्त होता है। ये मन एक बहुत खतरनाक वस्तु है। ये मन के कारण हम यहां फंस गए हैं। मन क्या करता है? मन बोलता है चलो इस जगत को भोग करो, और इंद्रिया को वैसे इस जगत को भोग करने के प्रति इंद्रिया को प्रलुब्ध करता है या सताता है, और उसके कारण क्या होता है? हम इस भौतिक जगत के बंधन में फंस जाते हैं। इस भौतिक जगत के बंधन में रहना ठीक है या नहीं? भौतिक जगत में जगत के बंधन में रहना ठीक नहीं है, आप कहते हैं सच? तो अगर कोई बोलेगा चलो इस जगत से छोड़कर चले जाओ, तो आप क्या बोलेंगे? हम कैसे जाएंगे? या कोई जगत इस जगत से इस कोई अगर इस जगत को छोड़ के चला जाता है तो हम क्या बोलते हैं? मन में कष्ट होता है, शोक करते हैं। तो वैसे हम इस भौतिक जगत का बंधन में फंस गए हैं, जबकि हम समझते हैं कि इस जगत का बंधन मंगलदायक नहीं है, फिर भी हम इस जगत के बंधन में फंसे हुए हैं। तो इस जगत का बंधन से मुक्त होना जरूरी है? जरूरी है। तो मुक्त होना जरूरी है ये तो हम समझते हैं, बल्कि हम कैसे ये जो जरूरी काम को हम कैसे सफल कर सकेंगे, इस बारे में कहा गया है कि परम दृष्टा निवर्तन्ते। इस भौतिक जगत के बंधन से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हमें और कोई परम, इससे बढ़कर कोई वस्तु प्राप्ति होता है। अर्थात आपके पास अगर 5,000 रुपया है तो हम अगर बोलेंगे कि 5,000 रुपया दे दीजिए हमको, आप देंगे? नहीं, बोलेंगे मेरे पास केवल 5,000 रुपया है। बल्कि हम अगर बोलेंगे देखिए आप अगर हमको 5,000 देंगे तो आपको 5,00,000 मिलेगा, तब आप क्या बोलेंगे? 5,000 क्यों, 25,000 ले लीजिए। है ना? तो ये है परंग दृष्टा। जब कोई बड़े लाभ का संभावना रहता है तो छोटा जो लाभ है उसको हम त्याग सकते हैं। तो इस भौतिक जगत में कुछ सुख है, भौतिक जगत से हम कुछ प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम भौतिक जगत के बंधन में फंस गए हैं। बल्कि अगर हमको पता चलता है कि इस भौतिक जगत के परे और एक जगत है जहां जाने से हमको बहुत लाभ होगा और ऐसा कुछ प्राप्ति होगा जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तब इस भौतिक जगत छोड़ने से हमें कोई कठिनाई नहीं होगा। जैसे आप जो कमरा, जो मकान में रहते हैं, अगर कोई आकर बोलेंगे कि ये मकान छोड़ दो, छोड़ के निकल जाओ यहां से, तो क्या आप क्या बोलेंगे? क्यों मैं जाऊंगा? और तुम बोलने वाला कौन हो हमको निकलने? ये मेरा घर है, मेरा घर से निकलने वाला तुम कौन हो? बल्कि वो अगर आके बोलता है देखो तुम्हारे लिए एक पैलेस बन गया है, तो चलो उस पैलेस में हम जाते हैं तुमको लेके, उस पैलेस में तुमको लेने के लिए मैं आया हूं, तब आप क्या बोलेंगे? चलो जल्दी जल्दी चलो, तुम गाड़ी लेके नहीं आया है, एक स्कूटर लेके आए हो, थोड़ा जल्दी जाने के लिए तैयार करना चाहिए था। तो वैसे ही ये परम दृष्टा, इस भौतिक जगत के परे जो और एक जगत है, उस जगत का ठिकाना, उस जगत का संदेश जब तक हमें नहीं रहता है तब इस भौतिक जगत को छोड़ना मुश्किल होता है। परंतु जब हमें भली भांति पता चल जाता है कि इस भौतिक जगत के परे और एक जगत है जहां हमें सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगा, तब क्या भौतिक जगत को छोड़ने से दिक्कत होगा, कठिनाई होगा? नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? और मैं तो ऐसे पूछूंगा, हम लोग यहां क्यों आए हैं? हम क्यों आए हैं यहां उज्जैन में? हम लोग क्यों आए हैं? हम आए हैं आपको आपके घर से निकलने के लिए। बल्कि वैसे निकलना नहीं, हम आपको ये संदेश देने के लिए आए हैं कि आपका, आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्थान प्रतीक्षा कर रहा है। वहां जितना जल्दी जा सकते हैं तो उतना ही आपका मंगल होगा, उतना ही आपका कल्याण होगा। तो आप अगर बोलेंगे तो मैं हमारा फैमिली लेके छोड़ के कैसे जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि आपका फैमिली के साथ चलिए। हम केवल आपको ही लेने के लिए नहीं आए हैं, आप आपका सारे फैमिली को लेने के लिए आए हैं, सबको लेने के लिए हम यहां आए हैं। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं? उस जगत का संदेश देने का कोशिश कर रहा है। तो जो संदेश हम दे रहे हैं वो क्या आपको पसंद आ रहा है? नारायण जी पसंद आ रहे हैं? सच? बहुत अच्छा। तो बहुत आते हैं हमारे साथ, और दूसरे को भी बताना क्या मिल रहा है। ये जो संदेश जो मिल रहा है सही है? सही है, बिल्कुल सही है। ओके, तो ये अगर सही है तो क्या करना चाहिए? दूसरे को भी बताना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं वो जगह कैसी है। तो इस विचार के शुरू शुरू में हमको ये समझना होगा कि शरीर और आत्मा में अंतर क्या है, भौतिक और चेतन में अंतर क्या है। भौतिक वस्तु जो है वो जड़ है, उसमें न तो चेतना है न तो जीवन है, बल्कि हमारा हम लोग सजीव हैं, हम जिंदा हैं, हम लोग हम क्यों जिंदा हैं, कैसे जिंदा हैं, क्योंकि ये शरीर में आत्मा है। ये सब मान लिया आप लोग? आप लोग मान लिया कि शरीर में आत्मा है इसलिए शरीर जिंदा है? जो जो मान लिया है दो हाथ उठाइए। वो बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये मंत्र हम क्यों जपने के लिए बोलते हैं, उच्चारण करने के लिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इस मंत्र जपने से शरीर और आत्मा में जो अंतर है वो पूरा हो जाता है, वो हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है। ये मंत्र जपने से हमें धीरे धीरे हमें ये अनुभव होता है, उपलब्धि होता है। ये केवल विश्वास के बात नहीं है, ये उपलब्धि के सवाल है, अनुभूति के विषय है। हम अनुभव कर लेते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है। वैसे धीरे धीरे आत्मा और शरीर, आत्मा जब शरीर से अलग हो जाता है तब क्या होता है, तब शरीर में जो कुछ होता है उसको, उसके द्वारा आत्मा प्रभावित नहीं होता है। जब आत्मा और शरीर एक साथ जोड़ा हुआ रहता है, मतलब अपना आत्मिक स्वरूप को भूलकर जब तक हम ये शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं, मानते हैं, तब तक ये शरीर में जो कुछ होता है हम सोचते हैं कि ये मेरा हो रहा, ये शरीर में थोड़ा सा दर्द हुआ और सोचते हैं कि मेरा दर्द हो रहा है, बल्कि दर्द किसका हो रहा है, दर्द शरीर का हो रहा है। तो हम क्यों बोल रहे हैं कि मेरा दर्द हो रहा है, क्योंकि हम सोचते हैं, हम मान बैठे हैं कि ये शरीर हम हैं। बल्कि जब हम शरीर से आत्मा का, जब चेतना शरीर से निकल जाता है, कैसे निकलता है, चेतना जो है ये बहती है, इट फ्लोज। तो चेतना, अब कैसे चेतना जा रहा है, हमारा चेतना किस तरह जा रहा है, चेतना कहां से जा रहा है ना, चेतना तो आता है आत्मा से, बल्कि जा रहा है कहां से, इंद्रिया से जा रहा है, आत्मा से मन, मन से इंद्रिया, इंद्रिया से कहां, विषय। हमारे कितने इंद्रिया हैं, इंद्रिया हैं, हाँ पांच है, कौन कौन, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। तो ये इंद्रिया क्या करता है, आंख क्या करता है, आंखें देखता है, कैसा देख, कौन सी वस्तु देखना चाहता है आंखें, जो सुंदर है। कान क्या करता है, कान सुनता है शब्द, कौन से शब्द सुनता है, सुनना चाहता है, हाँ सुंदर शब्द, जो मन के मनोरंजनकारी होता है, मन को जो शब्द आनंद देता है उसको वो सुनना चाहता है। और नाक सुगंध लेना चाहता है, कौन सी सुगंध, जो मन को आनंद देता है, मनोरंजन करता है, रंजन, रंजन का मतलब रंग चढ़ाता है। तो और त्वचा क्या करता है, स्पर्श करना चाहता है, कौन सी वस्तु, हाँ, जो अनुभूति के द्वारा हमें सुख आता है। और जीभा क्या करता है, वो स्वाद लेना चाहता है, कौन से स्वाद, जो स्वाद मनोरंजन होता है। तो ऐसे इंद्रिय की ओर, इंद्रिया की माध्यम चेतना कहाँ जा रहा है, विषय के प्रति, इंद्रिया का जो विषय है, जैसे रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। और इसके कारण क्या हो रहा है, हम इंद्रिया सुख भोगने का इरादा कर रहे हैं, इंद्रिया सुख भोगने का वासना या प्रयास कर रहा है। बल्कि इससे क्या हो रहा है, इंद्रिय के द्वारा विषय को भोग करने से जो हम चाहता है वो क्या मिल रहा है, मिल रहा है नहीं। ऐसे तो भौतिक जगत में सुख जो है वो केवल क्षण भर के लिए है, अश्वाश्वतम। अश्वाश्वतम का मतलब है जो स्थायी नहीं है, जो नित्य नहीं है, अश्वाश्वतम। बल्कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम आनंद ढूंढ रहे हैं। आनंद इस भौतिक जगत में मिल रहा है नहीं, हम भौतिक जगत में सारे वस्तुआ मांगते हैं, बल्कि मांग जब मिलता है तब हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमें लगता है कि वो तो ये तो मैं नहीं चाहता। बल्कि असल आनंद, हाँ, जब हम आध्यात्मिक जगत में वापस जाते हैं तभी केवल मिलता है। आध्यात्मिक जगत में जाने का मतलब क्या है और जाने का पात्रता क्या है, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का, आध्यात्मिक जगत के जगत में प्रवेश करने का पात्रता है कि हमें आत्मिक स्वरूप में हमें स्थिर होना है, ये भौतिक बंधन से मुक्त होकर आत्मिक स्वरूप में स्थिति लाभ करना। अर्थात जब हम ये भौतिक शरीर को अपना स्वरूप न मान के जब हम समझ लेते हैं, भली भांति उपलब्धि कर लेते हैं कि हमारा आत्मा ही हमारा स्वरूप है, तब हम आध्यात्मिक जगत में वापस जाने का लायक बनते हैं। और उस जगत में जाने से फायदा क्या होता है, हम जो तीन वस्तु चाहते हैं वो मिल जाता है। हमारा असल चाहना क्या है, हमारा असल चाहना तीन प्रकार का होता है। हमारा चाहना क्या है, एक तो है हम मरना नहीं चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहते हैं, हम पूर्ण ज्ञान सब कुछ जान लेने के जान लेना चाहते हैं और हम आनंद चाहते हैं। हमारे जितने सारे चाहना है ये केवल इस तीन चाहना के आधार पर ही है। और ये तीन चाहना क्या इस भौतिक जगत में कभी पूर्ण होता है, प्राप्ति होता है, ऐसा कोई भौतिक जगत में है जिसका कभी मृत्यु नहीं होगा, कोई है ऐसा नहीं। जातस्य हि ध्रुव मृत्युर, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु एकदम सुनिश्चित है। तो मृत्यु हमें, हाँ, सबको मृत्यु सबका ही होगा। भौतिक जगत में अगर हम रहेंगे तो यह मृत्यु रहेगा, बल्कि मृत्यु किसका होगा, शरीर का मृत्यु होगा। और जब हम पहचान लेते हैं कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, तब क्या हमारा मृत्यु होगा, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। और आत्मा पूर्ण ज्ञानमय है, और आत्मा आनंदमय है। तो ऐसे आत्मा जब भगवान के साथ संपर्क जोड़ लेते हैं तब आत्मिक स्वरूप प्राप्त हो जाते हैं। हम भगवान से बिछोड़ गए हैं इसलिए हम इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत के बंधन में फंस गए हैं। तो यहां से अगर हमें निकलना है तो कैसे निकलना चाहिए? भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से। और वो भगवान कौन है? भगवान परम कृपालु हैं, भगवान हमारे परम पिता हैं। बच्चा, लड़का पिता को छोड़ के चला जा सकता है, बल्कि पिता कभी लड़का का भूलता है, भूलते हैं बारे में, लड़का के बारे में कोई कभी नहीं भूलते हैं। और पिता ने प्रतीक्षा करते हैं कब लड़का वापस आ जाएगा मेरे पास, है ना? ठीक, पता है तुमको? ओके। तो तुम पिता को छोड़कर चले जा सकते हो, बल्कि तुम्हारे पिता तुम्हारे बारे में हर समय सोचता रहे। तो जो हमारा परम पिता है वो क्या हमें, हमारे बारे में सोच रहे हैं? हम उनको छोड़ गए हैं, छोड़ दिए हैं, हम उनको भूल गए हैं, परंतु उन्हें हमें कभी नहीं भूला है। और उन्होंने प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हम उनके पास वापस जाएंगे। तो आप बताइए, इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के पास वापस जाना क्या कोई कठिन काम है? नहीं, केवल हमें ये भगवान के पास अपने आप को समर्पण करना, एकदम सही मनोभाव से हमें भगवान के पास प्रार्थना करना होगा कि भगवान, मैं बहुत गलत काम कर किया है आपसे छोड़कर, बिछोड़कर, अब कृपा करके आप मुझे आपके पास बुला लीजिए। तो भगवान क्या करेंगे? भगवान तुरंत ही अपने पास बुला लेंगे। तो वैसे जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ लेते हैं तब हम बहुत आसानी से भगवान के पास पहुंच सकते हैं। ये जो विचार हैं, ये विचार सही हैं? हाँ, ये विचार क्या मेरा विचार है? ये विचार किसका विचार है? हमारे शास्त्र का विचार है। शास्त्र कभी नहीं गलत बोलता है कुछ। शास्त्र में जो कुछ है वो सब सब ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है। और जब हम इस विचार को ग्रहण करके आचरण करते हैं तो उसका फल उसी वक्त मिलना शुरू होता है। इसलिए हम उज्जैन आए हैं। हम लोग उज्जैन आए हैं केवल ये संवाद, ये संदेश आपको, आपके पास पहुंचाने के लिए। तो इसको कृपा करके, इसको विचार करके अगर सोचते हैं कि ये ग्रहण करना है तो जरूर ग्रहण कीजिए। और हमारे तरफ से अगर कोई भी सहयोग हम दे सकते हैं, जरूर हम देते रहेंगे। इसलिए ही हम लोग यहां आए हैं, और इसके अलावा हमें और कोई उद्देश्य नहीं है। हम यहां जो कुछ कर रहे हैं केवल ये संदेश आपके पास पहुंचाने के लिए। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी को? हाँ, बहुत अच्छा। ये जो मंत्र जो है, मंत्र गुरु के पास से दीक्षा के माध्यम प्राप्ति होने के बाद ही केवल मंत्र जपा जाता है। हाँ, बल्कि जो महामंत्र है, महामंत्र भगवान सबके लिए इस कलियुग में ऐसे दे दिए, तो महामंत्र जो है वो दीक्षा बिना भी आप जप सकते हैं और इसका फल आपको जरूर मिलेगा। बल्कि दूसरा मंत्र जो है, जिसे गायत्री मंत्र कहा जाता है, गायत्री मंत्र या ये जो और जो मंत्र हैं वो दीक्षा के पश्चात श्री गुरु के कृपा से प्राप्त होने के बाद ही केवल जपना चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, यस पारुल। बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, विचार दो दो प्रकार के हो सकता है। एक तो ये शरीर मैं नहीं हूं और इसलिए शरीर में जो कुछ हो रहा है वो मेरा नहीं हो रहा है, ये तो एक भावना है। और दूसरा भावना है ये कि ये शरीर मेरा नहीं है पर ये शरीर भगवान का सेवा का एक 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 शरीर एक माध्यम है, भगवान का सेवा करने का एक माध्यम है, तो इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये शरीर को लेकर क्या करना चाहिए? भगवान को सेवा में लगाना चाहिए। हाँ, तो भगवान के से अगर तुमको कुछ मिला है जो उनको सेवा में लगाना चाहिए तो उसको सही रूप से देखभाल करना चाहिए, है ना? तो ऐसे ही भक्त गण भगवान के सेवा के सामग्री के रूप में ये शरीर को देखकर ये शरीर का देखभाल बहुत अच्छा तरह करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, माइक दे रहे हैं। कृष्ण भावना अमृत और कृष्ण भावना भावित। ओके, या दोनों में अंतर क्या है? एक ही है, भावना जो है, चेतना का जो क्रिया है वो है भावना। तो हमारा चेतना किस तरह जाना चाहिए, किस और चेतना को लेना चाहिए, भौतिक जगत के प्रति या भगवान के प्रति? भगवान के प्रति। जब हमारा चेतना भगवान की ओर जाता है तो उसे कृष्ण भावना या कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। ये जो भावना के द्वारा जो भावित होना वही असल बात है। बल्कि ये भावना कैसा है? अमृत है। जिस भावना के कारण हम अमर बन जाते हैं तब मृत्यु नहीं रहता है, तो इसलिए है अमृत, कृष्ण भावना अमृत। अच्छा, और कौन यहां उठाया था? यहाँ कोई प्रश्न था और किसी को? अच्छा, ठीक है, अगर प्याज रसन छोड़ नहीं सकते हो कोई बात नहीं, जप करते रहो, हाँ चलेगा। बल्कि ये भी ध्यान रखना कि जप करते करते प्याज रसन भाग जाएगा, जप के प्रभाव से प्याज और लहसुन नहीं रहेगा वहां। ठीक है, शुरू शुरू में ऐसा होता है। अगर आप बोलेंगे कि प्याज लहसुन खा छोड़ के तब जप करना, तब तो शायद कभी भी जप नहीं करेंगे। बल्कि कौन ज्यादा ताकतवान है, प्याज लहसुन या हरि नाम? तो भगवान का नाम प्याज लहसुन को हरा देगा। ये बोलना जब करते रहो और ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि आप इतना सुंदर प्रचार कर रहे हैं देवास में। बहुत धन्यवाद। ठीक है, लाना, लाए क्यों नहीं, आज क्यों नहीं लाए? ओके, हाँ लाइए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ ठीक, हाँ करते नहीं, कोई बात नहीं, वो भी हाँ अगर आपने आप जपना चाहते हैं तो जप सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, और साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करना, वो भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, कोई छोड़ने का जरूरत नहीं, आप करते रहिए। अच्छा ठीक है, दो माला करके बाद में 16 माला करना। हाँ करते रहे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा।